आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिव्यांगना द्विवेदी और हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री का फिफ्थ चैप्टर, जिसमें आज हमें स्टार्ट करना है पेज नंबर 67 के थर्ड पैराग्राफ से। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वस्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वस्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरे से ली। मतलब अकबर का जब रूलिंग टाइम था तो उन्होंने बहुत सारे वस्तुकला, जैसे कहते हैं, मतलब जो घर के निर्माण में और इस टाइप के जो वस्तुकला का निर्माण जो होता है, आर्किटेक्चर जिसे कहते हैं, उसमें वो बहुत सारे उन्होंने निर्माण करवाए थे। और इसकी जो इंस्पिरेशन थी वो उन्होंने अपने पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली थी। हुमायूं के मकबरों में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार पिश्तक मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त बिहिष्ट की परंपराओं में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता है। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने थे। तो हमें बताया जा रहा है कि एक जो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वो हुमायूं मकबरे का ले सकते हैं। इसमें पहली बार जो गोल गुंबद जो होता था उसका निर्माण दिखाई दिया था और ये बहुत ऊंचा हुआ करता था। फिर जो पिश्तक थे, द्वार अलग तरीके से जो बनाए गए थे, और इसको बनाया किससे था, लाल बालू पत्थर जो होते थे उससे बनाया गया था। और इसकी जो साइड की जो, मतलब इसकी जो किनारे थी, जो आउटलाइनिंग इसमें करके रखी थी, वो इन्होंने करके रखी थी संगमरमर यानी कि मार्बल की। और ये चार बाग के बीचों बीच था, जो चार हिस्सों में बाग को बना देते हैं, चार हिस्सों में बांट देते हैं, तो उसके एकदम बीचों बीच था। चित्र 11, 1562 व 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। क्या आप नहरों को देख सकते हैं? यहाँ बीच में ये जो पतली पतली नहरें हैं, ये नहर हैं, पतली पतली, ये जो यहाँ पर आपको रास्ते दिख रहे हैं वो नहर है जिसमें पानी भरा जाता था पिछले समय में। अगले पेज पर आ जाइए, चित्र 12, दिल्ली में दीवाने आम में सिंहासन का छज्जा। इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था, तो ये भी एक उनका ट्रेडिशन था, एक आर्किटेक्चुरल निर्माण है उनका। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। मतलब शाहजहां के टाइम से मुगल की जो ये आर्किटेक्चर थी ये बहुत ज़्यादा होने लग गई थी और ये बहुत सारे निर्माण करते रहते थे। बेसिकली इन्होंने आगरा और दिल्ली में सबसे ज़्यादा निर्माण करवाए हैं। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षाओं, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानीपूर्ण बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहल सुतुन अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। मतलब जो दीवाने और सो दीवाने खास थी, जो कि सार्वजनिक और व्यक्तिगत रूप से इन जहाँ पर समारोह कराए जाते थे, मतलब प्राइवेट और पब्लिक जो कार्यक्रम करवाए जाते थे, तो इनको बहुत ध्यान से बनवाया गया था। और इसको क्या बोला जाता था, चिहल सुतुन बोला जाता था, जिसका मतलब था 40 खंभों का सभा भवन। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्रायः किबला नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा बोला जाता है, तो वहां पर इनका सिंहासन रखा हुआ था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इस वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि था। तो मतलब ये जो आर्किटेक्चरल इनका जो साइट था उससे ये पता चलता था कि राजा या तो खुद को अपना प्रतिनिधि मानता था ईश्वर का, या प्रजा उसको मानती थी। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नव निर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंततः संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को वाणी बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि ऑर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है। और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है शाहजहां ने जो दिल्ली में लाल किला करवाया था, तो जब वहां का दरबार उन्होंने न्याय किए दरबार और शाही दरबार जब उन्होंने उस टाइम पर बहुत बल दिया था उस पर, और उन्होंने अपने सिंहासन के पीछे पित्रा दूरा के जड़ाऊ काम करवाए थे। पित्रा दूरा का मतलब होता है उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने। तो ये उन्होंने एक शिल्पकला वहां पर करवाई गई थी, और जिसमें एक पौराणिक यूनानी देवता भी थे, उनका चित्रण भी था बजाते हुए, वीणा बजाते हुए। और ऐसा माना जाता था कि ये जो देवता हैं, इनका संगीत इतना आक्रामक होता है कि ये जो जानवर होते थे जो आपस में लड़ते रहते थे उनको भी ये शांत कर सकता था, ऐसा इनका संगीत माना जाता था। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। मतलब जो शाहजहां का जो सार्वजनिक सभा था उसका निर्माण ये सोचकर किया जाता था कि जो राजा है वो सबके साथ इक्वल बिहेव करेगा और सब लोग अच्छे से रह सकेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इसका निर्माण चार बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित ना होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। मतलब जो इनका शासनकाल था, तो शुरू में जो शाहजहां थे उनकी जो राजधानी थी वो आगरा थी। तो यहाँ पर जितने भी विशिष्ट वर्ग के लोग थे उन्होंने अपना घर बनवा लिया था, कहाँ पर, यमुना नदी के किनारे बनवाया था। और इसका निर्माण चार बाग की तरह ही होता था, लेकिन इसमें बस फर्क इतना होता था कि इसको नदी तट बाग कहते थे क्योंकि ये नदियों के बिल्कुल किनारे बनता था। इसलिए शाहजहां ने अपने शासन की भयतम वस्तु कलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। मतलब उन्होंने एक अपने शासन काल में एक बहुत ही अच्छी आर्किटेक्चरल जो उपलब्धि है वो ताजमहल के नक्शे पर करी थी। उन्होंने क्या किया था, वहां पर नदी तट बाग की योजना अपनाई थी, सफेद संगमरमर का मकबरा बनवाया था नदी तट के एक चबूतरे पर और दूसरे पर एक बाग बनवाया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा शिको को ही नदी तक पहुंच मिलती थी, अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के दूसरी शहर में करवाना पड़ा था। मतलब उन्होंने दिल्ली में भी शाहजहानाबाद के पास करवाया था इस टाइप का निर्माण, और उसकी जो अनुमति थी वहां पर जाने की सिर्फ उनके बेटे को थी, बड़े बेटे को, और बाकी लोगों को दूसरे शहर जहाँ पे यमुना नदी है वहां पर अपना घर निर्माण करना पड़ा था। पेज 69 में देखिए, यहाँ पर आगरा का ताजमहल है जिसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ था। मतलब बनना तो बहुत पहले शुरू हो गया होगा लेकिन कंप्लीशन इसका 1643 में हुआ था, और आज भी हम लोग इसको 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में गिनते हैं। मतलब सोचिए कितना पुराना है ये, 16th सेंचुरी का है एंड टुडे इट इज़ 21st सेंचुरी, और अभी भी ये ताजमहल उतने ही अच्छे से अपनी इमारत जो है इसकी वो खड़ी हुई है। हालांकि आजकल क्या है कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है एनवायरनमेंट में जिसकी वजह से इसका जो मार्बल है वो येलो होता जा रहा है, पीला पड़ता जा रहा है। उसका कारण क्या है कि जो आगरा और मथुरा में जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, ऑयल फैक्ट्रीज हैं, उनके जो धूल निकलती है, जो ऊपर उनका पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं हवा में, उसकी वजह से वहाँ पर एसिड रेन हो रही है, और उस एसिड रेन की वजह से ये पूरा जो मार्बल है इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू येलो कलर। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, चित्र 14 दिया है यहाँ पर। एक नक्शे से आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्विकल्प दृश्य। ध्यान दें कि कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित हैं। ताजमहल बाई ओर है। चित्र 15 में दी गई दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से करें। मतलब किस तरीके से यहाँ पर ये देखिए ताजमहल है, फिर यमुना नदी है दूसरे तट पर, जो बाकी के अभिजात थे उन लोगों ने अपना घर बसा लिया था यहाँ पर। फिर नीचे चित्र 15 है एक, 1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा, बादशाह का निवास कहाँ है, शहर काफी घना बसा हुआ लगता है, लेकिन क्या आपको यहाँ कई बड़े बाग भी दिखाई देते हैं, क्या आप मुख्य मार्ग व जामा मस्जिद ढूंढ सकते हैं। मुख्य मार्ग या जामा मस्जिद नीचे साइड जो ये ऑरेंजिश कलर का दिया है वो है, और यहाँ पर बहुत सारी ये जो ग्रीन कलर के बाग हैं ये दिखाई दे रहे हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। मतलब 8th और 18th सेंचुरी के टाइम पर इस बीच में जब इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही थी कंस्ट्रक्शन को लेकर, तो इस टाइम पर अलग अलग क्षेत्र में विचारों का भी, थिंकिंग्स का भी आदान प्रदान हुआ था, एक्सचेंज हुआ था। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। अध्याय 6 देखें, इसमें ये हमें बताया जा रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ जो एक दूसरे के क्षेत्र की जो परंपराएं थी, ट्रेडिशंस थे, उनको अपनाया जा रहा था। एग्जाम्पल है विजयनगर के जो राजा थे उनके जो भी गजशालाएं थे बीजापुर में, गोलकुंडा में, तो वहाँ जो आसपास की सल्तनत की जो वास्तुकलात्मक शैली थी, जो उनका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन था, वो बहुत ज़्यादा असर कर रहा था इन लोगों के लिए, और वैसे ही डिज़ाइन यूज़ करके वहाँ पर किले निर्माण किए जा रहे थे। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। मतलब मथुरा के पास जो जितने भी जो वृंदावन है जहाँ पर कृष्ण जी का जन्म हुआ था, वहाँ जितने भी मंदिर बने हैं उसमें जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है वो फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती है, क्योंकि उस टाइम पर ये आगरा, मथुरा, वृंदावन ये सब मुगलों के क्षेत्र में आता था, तो उस टाइम का जो आर्किटेक्चर था वो भी इसी काइंड ऑफ था। इवन जो इन लोगों की जो निर्माण कला होती थी, ये लोग क्या करते थे, अब इस पिक्चर में आप देख सकते हो ऊपर कांच लगे हुए हैं कितने सुंदर सुंदर, तो अलग अलग कांच से भी ये लोग बनाते थे चीज़ें। मतलब आपने कभी ध्यान भी दिया हो तो जितने मुस्लिम्स होते हैं ज़्यादातर वो कांच बहुत यूज़ करते हैं, मिरर का बहुत यूज़ करते हैं अपने घरों में, या अपने नॉर्मली भी अगर कोई फैमिली होती है तो वो अपने घर में मिरर्स वगैरह अगर कुछ कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं तो डिज़ाइन में मिरर ज़रूर इंक्लूड कराते हैं। तो उसी तरीके से इन लोगों ने भी मिरर का वर्क बहुत ज़्यादा कराया था। इवन आप अगर मथुरा के जो कृष्ण मंदिर हैं जितने भी, उसकी जो सीलिंग है वहाँ पर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर मिरर को यूज़ करके कृष्ण जी और गोपियों की वहाँ पर पिक्चर बनाई हुई है। आपको नॉर्मली किसी मंदिर की सीलिंग पर इतनी ज़्यादा कारीगरी देखने को मिलेगी नहीं, बट ये उस टाइम का ट्रेडिशन था, वहाँ आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ऐसा था, इसलिए वहाँ पर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी, वो इसीलिए मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इसके कलात्मक रूप व वस्तुकलात्मक शैलियों के पर संसेचन में मदद मिली। मतलब जितने भी बड़े बड़े साम्राज्य थे उनका जो निर्माण हुआ, जो उनके क्षेत्र थे, जो अलग अलग क्षेत्र थे, तो इस साम्राज्य निर्माण की वजह से शासन के अधीन वो सारे क्षेत्र आ गए, और ये जो इनकी कलात्मक रूप और वास्तुकलात्मक शैलियाँ थीं इनको बहुत मदद मिली थी, क्योंकि ये जितने क्षेत्र इनके अंतर्गत आते गए उतने क्षेत्रों में ये सभी तरीके के निर्माण करते चले गए। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों के छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मतलब मुगल शासक जो थे वो अपने भवन के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे, और एग्जाम्पल आप ले लीजिए जो बंगाल में जो शासक थे उनकी जो छप्पर की झोपड़ी के जैसे दिखने वाली छत बनवाई गई थी। मुगलों को यह बांग्ला गुबंद, अध्याय 9 में चित्र 11 और 12 देखें, इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। मतलब उनको ये जो बांग्ला गुबंद था वो इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपने आर्किटेक्चरल टेक्निक्स में इसका इस्तेमाल किया था। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। मतलब और भी अलग अलग क्षेत्र थे जहाँ पर इन्होंने देखा था अलग अलग जगह पर कि कैसे क्या आर्किटेक्चरल फॉर्म्स यहाँ पर यूज़ किए जाते, तो इन्होंने भी वैसे किए थे। और आपको एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अकबर की जो राजधानी थी उस टाइम पर फतेहपुर सीकरी, वहाँ पर बहुत से इमारतों में गुजरात और मालवा की जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन थी वो वहाँ पर थी। चित्र 16 देखिए, वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग 1590। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था, जो चार में से प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें, जिनसे इसकी ऊंची भीतरी छत एक निर्माण किया था। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया जाने लगा। मैंने अभी आपको बताया था कि ये लोग जो सीलिंग का जो अंदर वाला पार्ट होता था उसको बहुत ही सुंदर बनाते थे, तो आपको ये आगरा मथुरा के जो कृष्ण जी के जितने भी मंदिर है वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता में धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वस्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही, तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए यह शैली अपनाई। मतलब 18 सेंचुरी के टाइम पर जितने भी मुगल शासक थे उनकी जब सत्ता खत्म हो गई थी उसके बाद भी उनका जो आर्किटेक्चुरल डिज़ाइन था वो बाकी के शासकों ने बहुत पसंद किया, और अपने राज्य स्थापित करने के टाइम पर उन्होंने यही सारी आर्किटेक्चुरल डिज़ाइन अपनाई थी। चित्र 17, फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक, ये गुजरात क्षेत्र के वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। मतलब ये जो यहाँ पर साइड में पिलर के ऊपर आपको डिजाइन जैसी दिख रही है ना, चारों तरफ चार ऐसी डिजाइन बनी है, तो ये टेक दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है ऊपर की छत को। तो ये जो डिजाइन लिया गया था ये गुजरात से लिया गया था। अब आ जाइए आसमान छूती चर्च। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशिष्टताएं हैं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्रायः बाइबल के लिए गए दृश्यों का चित्रण है, तथा उड़ते हुए पुष्ते। 12th सेंचुरी में फ्रांस में शुरू शुरू में ऐसे भवन की निर्माण होने लगी जिसमें हल्के, बहुत भारी नहीं होते थे वो चर्च, मतलब उसमें बहुत भारी मटेरियल नहीं लगता था, चर्च बनने लगे जो कि बहुत ऊंचे ऊंचे होते थे। तो ये जो शैली थी इसका नाम था गॉथिक, और इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती थी, नुकीले ऊंचे मेहराब बनाए जाते थे और रंगीन कांच का उपयोग किया जाता था जिस पर बाइबल के दृश्य से जो कि लिया गया था। दूर से ही देखने वाली ऊंची मीनारे और घंटी वाली बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। मतलब जो जितने भी दूर से देखने वाली जो ऊंची इमारतें थी और घंटी वाली जो बुर्ज थी वो चर्च बन गए थे। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नाट्रेडम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। मतलब एक एग्जाम्पल जो इस पूरी आर्किटेक्चरल का है वो है पेरिस का नाट्रेडम चर्च। 12th एंड 13th सेंचुरी के डिकेड्स में इसका, कई दशकों के बाद इसका निर्माण पूरा हुआ था। चित्र पर एक नज़र डालें और घंटी वाले बुर्जों को पहचानने की कोशिश करें। तो ये आपको बताना है कौन सा है घंटी वाला बुर्ज। अब आ जाइए कल्पना करें पर। आप एक शिल्पकार हैं और ज़मीन से 50 मीटर की ऊंचाई पर बांस और रस्सी की सहायता से बनाए गए लकड़ी के एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। आपको कुतुब मीनार के पहले छज्जे के नीचे एक नीचे अभिलेख लगाना है, क्या आप यह कार्य कर सकेंगे? तो ये आपको बताना है कि आप कैसे करोगे। अब आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन पर। वास्तुकला का अनुप्रस्थ टोडा निर्माण सिद्धांत चापाकार सिद्धांत से किस तरह भिन्न है? इसका आंसर आपको मिलेगा पेज 63 पर। चापाकार के बारे में पहला पैराग्राफ जहाँ पर नंबर 1 लिखा है वो दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिर रचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। दूसरा पार्ट जो है उसका आपको मिलेगा आंसर पेज नंबर 61 पर, सेकेंड पैराग्राफ। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुस्पृत शहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। तो ये डिफरेंस था इन दोनों में। अब आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन पर। शिखर से आपका क्या तात्पर्य है? शिखर से तात्पर्य है सबसे ऊंची जगह, सबसे ऊंचा पॉइंट जो होता है उसे शिखर कहा जाता है। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। पितरा दूरा क्या है? एंड यू विल गेट दिस आंसर ऑन पेज नंबर 68। दूसरी लाइन पे लास्ट में आइए, लास्ट पैराग्राफ। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑफर्सियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि ऑफर्सियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। 68 पेज पर वापस आ जाइए। एक्चुअल मीनिंग गिवन है यहाँ पर पितरा दूरा का, उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने। नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन। एक मुगल चार बाग की क्या खास विशेषताएं हैं? एंड यू विल गेट दिस आंसर ऑन पेज नंबर 67 इन सेकेंड पैराग्राफ। चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार बाग कहलाते थे। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। तो ये आंसर आपका यहीं पर ख़त्म होता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आइए समझें के नीचे है। किसी मंदिर से एक राजा की महत्ता की सूचना कैसे मिलती थी? इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज 64 पे सेकंड पैराग्राफ में। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। नाउ कम टू 6th क्वेश्चन। दिल्ली में शाहजहां के दीवान ए खास में एक अभिलेख में कहा गया है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। यह धारणा कैसे बनी? ऐसा इसलिए बोला गया था क्योंकि दीवाने खास इतने अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया था, इतने अच्छे तरीके से उसका निर्माण किया गया था। वहाँ पर हर प्रकार की सुख सुविधा थी, हर प्रकार के ऐशो आराम थे, जिसकी वजह से ये बोला गया था कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, क्योंकि वहाँ जो निर्माण हुआ है वो इतना खूबसूरत हुआ है कि आंखें चकाचौंध हो जाएं उसे देखकर। इतनी खूबसूरती से वहाँ पर निर्माण किया गया था, यही कारण था कि ऐसा उसको बोला जाता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। मुगल दरबार से इस बात का कैसे संकेत मिलता था कि बादशाह से धनी निर्धन, शक्तिशाली कमज़ोर, सभी को समान न्याय मिलेगा? देखिए, जो मुग़ल दरबार था, जो अकबर था, वो हमेशा से ही सभी धर्मों के लोगों को अपनाता था और उसके सामने सभी धर्म के लोग बराबर सम्माननीय थे। तो वो ये बोलता था कि हमारी प्रजा में जो भी कोई भी धर्म अपनाना चाहता है, किसी भी धर्म का अनुयायी बनना चाहता है या किसी भी स्थल पर जाकर पूजा करना चाहता है, भगवान की आराधना करना चाहता है, तो वो कर सकता है। तो अकबर ऐसा नहीं था कि वो ये सोचे, या मुगल दरबार के जो बाकी शासक वो ऐसे नहीं थे कि वो ये सोचें कि ये अगर मुसलमान है तो हम इसके हित में फैसला सुनाएंगे, वो अगर हिंदू है तो हम उसके हित में फैसला नहीं सुनाएंगे, बल्कि वो पक्षपात किए बिना एक सही निर्णय लेते थे ताकि सभी को न्याय मिले और किसी को कभी कोई शिकायत ना रहे न्याय व्यवस्था से। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। शाहजहानाबाद में नए मुगल शहर की योजना में यमुना नदी की क्या भूमिका थी? शाहजहानाबाद में नए मुगल शहर की योजना में यमुना नदी का यह महत्व था कि यमुना नदी के किनारे मकबरा बनाया गया था और वहाँ पर चार बागों के बीच में उसे बनाया गया था। उसे नदी तट बाग कहा जाता था, मतलब जो बाग था वो बिल्कुल नदी तट के किनारे था और पूरी जो वहाँ की जनसंख्या थी वो वहीं पर बसी हुई थी। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यमुना नदी, क्योंकि सबको पानी की जो आपूर्ति होती थी वो वहीं से होती थी। नाउ कम टू, आइए विचार करें क्वेश्चन नंबर 9। आज धनी और शक्तिशाली लोग विशाल घरों का निर्माण करवाते हैं। अतीत में राजाओं तथा उनके दरबारियों के निर्माण किन मायनों में इनसे भिन्न थे? आज जो धनी और शक्तिशाली जो लोग हैं वो बहुत बड़े बड़े घरों का निर्माण कराते हैं, जैसे कि हमारे जितने भी अभिनेता अभिनेत्री होते हैं उनके घर बहुत सुंदर और बहुत बड़े होते हैं। तो पिछले जो राजा रानियां हमारी होती थी या उनके जो दरबारी होते थे वो जब निर्माण कराते थे तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं जनहित के लिए करवाते थे, और आज जो धनी व्यक्ति निर्माण कराता है वो सिर्फ अपने सुख सुविधा के लिए कराता है। तो इस वजह से दोनों परिस्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। चित्र 4 पर नजर डालें, यह इमारत आज कैसे तेजी से बनवाई जा सकती है? जब ये इमारत बनी थी उस समय क्रेन सुविधा नहीं थी, लेकिन आज के युग में क्रेन सुविधा की मदद से यह इमारत बहुत जल्दी बन सकती है। नाउ कम टू, आइए करके देखें क्वेश्चन नंबर 11। पता लगाएं कि क्या आपके गांव या कस्बे में किसी महान व्यक्ति की कोई प्रतिमा अथवा स्मारक है? इसे वहां क्यों स्थापित किया गया था? इसका प्रयोजन क्या है? तो ये आपको पता लगाना है। फिर भी मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि मैं रहती हूँ भोपाल में। भोपाल में महाराणा प्रताप जी का पूरे मध्य प्रदेश में और यहाँ के इलाकों में राज हुआ करता था। तो जो भोपाल का मेन जो इलाका है, जो कि मेन होता है पूरी सिटी में, जो बीचों बीच का इलाका है, वहाँ पर इनकी मूर्ति बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? क्योंकि वो यहाँ के शासक थे इसलिए, और उनके नाम पर मार्ग का या क्षेत्र का नाम भी है, महाराणा प्रताप नगर। नाउ कम टू 12th क्वेश्चन। आपने आसपास के किसी पार्क या बाग की सैर करके उसका वर्णन करें, किन मायनों में ये मुगल बागों के समान अथवा भिन्न है? तो ये आपको बताना है कि आपके आसपास जो पार्क हैं वो मुगल बागों से किस तरीके से अलग हैं या किस तरीके से सिमिलर हैं। एक बार जरा प्रीवियस पेज पर आ जाइए, 73 पर बीज शब्द देख ले हम। पूरे पाठ को पढ़कर 6 शब्दों की एक सूची बनाएं, इनमें प्रत्येक के लिए यह बताते हुए कि आपने उस शब्द का चुनाव क्यों किया यह वाक्य लिखें। तो ये आपका काम है, ये आपको करना है। एक बार चैप्टर फिर से रीड आउट करिए और ये एक्टिविटी करिए। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, प्लीज कीप रिवाइजिंग।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।